मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मॉक टेस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया है, जिसके तहत 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस। ये हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं और हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि अभी जो आपके अक्टूबर में प्री एग्जाम होने हैं, उस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स पर आधारित किन प्रश्नों के पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, उन्हीं को आधार बनाकर ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को तैयार करने में सच पूछे तो बहुत गहरी दृष्टि की जरूरत पड़ती है, बहुत लंबे वक्त की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको समय के साथ लगातार कदम ताल मिलाकर चलना होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत गहरे अनुभव की भी जरूरत होती है। तो ये 200 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप इन्हें हल करें और इनका लाभ उठाएं। और मैं यहाँ आप सबको यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों की नीति यह नहीं है कि हम ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे टॉपिक्स आपको उपलब्ध करा दें ये सोचकर कि इसमें से कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। और ये हम लोगों का अनुभव रहा है कि पिछले 4 सालों से हम लोग इस तरह के करेंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब उसमें से कई सारे क्वेश्चंस बकायदे प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट afeis.com पर जाकर इसे देख सकते हैं और हमारे ऐप पर भी ये अवेलेबल है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के अपने मुख्य विषय पर, और वह जीवन का अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार का अनुच्छेद 21 है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की, और आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन के, वहां आपको एक बात बहुत साफ साफ दिखाई देगी। आप प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि चलिए जीवन का अधिकार इसी से संबंधित प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़ेंगे। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो आसान सा है, आप हल कर लेंगे। लेकिन जब आप उनके विकल्प पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे आप भ्रमित होने लगेंगे। देखिए, जीवन का अधिकार आपने पढ़ा, आपके दिमाग में है, राइट? लेकिन उसकी व्याख्या किस तरीके से हो सकती है, जीवन के अधिकार के दायरे में और क्या क्या बातें आ सकती हैं, या यूं कह लीजिए कि जीवन का अधिकार का जो बहुत ही व्यावहारिक पक्ष है वो कहां तक जा सकता है, यदि इस पर आपने विचार नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप गलत विकल्प पर निशान लगाकर आएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी होती है वो इस मायने में थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव तैयारी होती है, यानी कि वहां ज्यादा गहराई की जरूरत पड़ती है। आगे चल करके मैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग करते रहे हैं, उसको आधार बना करके इस पर बातें करूंगा। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन में ही, 2 डिसीजन दिए हैं, सरकार को आदेश दिया है, राइट? और ये दोनों आदेश आपने अखबारों में पढ़े हैं और आप जानते हैं। पहला आदेश उसने ये दिया कि जिनकी भी कोरोना में मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि उसने केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूछा था, सुप्रीम बकायदे केंद्र सरकार ने कह दिया, जो जवाब दिया था वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। 2 सबसे बड़े रीजन बताए उसने, एक कानूनी और एक स्थितिगत। कानूनी रीजन ये है कि जो राष्ट्रीय आपदा हमारे यहाँ है और उसमें 12 आपदाएं ऐसी शामिल हैं जिसमें क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, जैसे बाढ़ आ जाने पर या भूकंप की स्थिति में, तो केंद्र सरकार ने कहा कि उसमें कोरोना से मृत्यु शामिल नहीं है, इसीलिए उस कानून के तहत हम देने के लिए बाध्य नहीं है कि हम इन्हें मुआवजा दें। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उन्हें मुआवजा दे सकें। ये केंद्र सरकार के जवाब थे। देखिए, आप विश्लेषण तभी कर पाएंगे जब आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट तथ्य मौजूद हो, तर्क मौजूद हो, सीधे सीधे ऊपरी तौर पर कह देने से बात नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको मुआवजा देना है, क्योंकि यह जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों ने अपना जीवन खोया है। और ये जो दौर रहा है कोरोना के मृत्यु का, दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से लोग बदहाल बदहाल रहे हैं, लोगों के 10-10 20-20 लाख रुपए खर्च हो गए लेकिन अपने लोगों को नहीं बचा पाए, और अगर कोई बच भी गया है तो वो मरने से बुरी स्थिति में है क्योंकि जितना खर्च हुआ है उसकी भरपाई करने की उनकी स्थिति ही नहीं है। नो डाउट कि केंद्र सरकार का यह भी कहना था कि भाई जो इस तरह की मृत्यु और भी तरीकों से होती है तो हम उनके लिए नहीं दे रहे हैं, तो कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कैसे दे सकते हैं। बात अपनी जगह वो सही हो सकती है, उस सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, वो ज्यादा व्यावहारिक पक्ष को लेकर के चलती है, लेकिन न्यायालय तो मौलिक अधिकारों को देखेगा। इसके साथ ही आप देखिए कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य ने बाकायदे ये कह दिया है कि कोरोना से जो मृत्यु हुई है उन्हें राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए देगी, 4-4 लाख रुपए, राइट। लेकिन उसने उसमें एक और भी संकट खड़ा कर दिया है कि ऐसे लोग जिनकी मृत्यु बिहार से बाहर हुई है उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब आप यहां फिर से एक अव्यवहारिक पक्ष देखिए कि भाई मान लीजिए कि आप बिहार हैं और बिहार के बॉर्डर एरिया में आप रह रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा था बिहार में क्योंकि आप देख ही रहे थे कि बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश चला गया, कोई गाजियाबाद चला गया आसपास में कि भैया कहीं से कुछ तो इलाज मिल जाए, चले गए और वहां वो नहीं रहे। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। तो दोस्तों एक उदाहरण के रूप में देखिए, फिर से आपके पास तथ्य है कि अगर बिहार जैसा राज्य दे सकता है, जैसा राज्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्थिक स्थिति बिहार की कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो जब बिहार जैसा राज्य ये कर सकता है तो दूसरे राज्य क्यों नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने फिक्स नहीं किया है कि आपको इतना धन देना ही होगा, देखते हैं कि उसके बारे में आगे चल करके क्या होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आप को टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में, मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है, बैसाखी थमा देना नहीं। इसलिए बहुत सी चीज़ें मेरी अनसेड रह जाती हैं, यानी कि अनकही रह जाती हैं, उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा अपने लेवल पर मेहनत करके, और तभी आप मजबूत भी बन सकेंगे, और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा। इसी के साथ ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है और मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त तो फैसला है, यह भी जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। एक देश एक राशन कार्ड। देखिए हमारे यहां नागरिकता एक है, हमारे यहां एक ही नागरिकता है, हम राज्यों के भी नागरिक नहीं है अमेरिका की तरह, हम केवल भारत के नागरिक हैं, बात हो गई। जो माइग्रेटेड लेबर है, जो काम करने के लिए पता नहीं कहां कहां से और कहां कहां जाते हैं, छत्तीसगढ़ के लेबर आपको पंजाब में मिल जाएंगे, आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, पता नहीं कहां कहां मिल जाएंगे, दूसरे दूसरे राज्यों के, राजस्थान के मजदूर आपको मिल जाएंगे, और इस कोरोना काल में आपने देखा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं किस तरह से अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, भूखे मर रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, क्या स्थिति थी। और अगर वो किसी दूसरे राज्य में पहुंचते हैं काम करने के लिए पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनके पास अपने राज्य का राशन कार्ड था तो उन्हें राशन मिल रहा था, लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति पंजाब पहुंच गया है तो पंजाब में उसे अनाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके पास राशन कार्ड छत्तीसगढ़ का है। और मजेदार बात यह है कि हम उससे काम ले रहे हैं, पंजाब उससे काम ले रहा है, दूसरे राज्य बकायदे उससे काम ले रहे हैं, उनके विकास में उस प्रवासी मजदूर का भरपूर योगदान है, लेकिन जो नियम कानून के तहत उनके लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं की गई हैं उनका लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपको ध्यान होगा कि हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत पहले से ही व्यवस्था की थी, एक देश एक राशन कार्ड की, जो जनवरी 2020 से शुरू कर दिया गया था और कुछ राज्यों में उसे लागू भी कर दिया गया है, ज्यादातर राज्यों में अब ये लागू हो गया है। केवल 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां यह व्यवस्था लागू नहीं है। ध्यान में रखने के लिए 4 राज्य मैं आपको बता सकता हूं, वो है असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। सोच करके देखिए कि दिल्ली में भी ये लागू नहीं किया गया है जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं। खैर चलिए, इन 4 राज्यों के लिए अब केंद्र सरकार ने कहा है, जो टाइम दिया हुआ है वो है 31 जुलाई, कि 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, क्योंकि अब आप इसे जीवन के अधिकार से जोड़िए कि जो भोजन का अधिकार है, राइट टू फूड, ये जीवन के अधिकार में शामिल है। देखिए अगर हम किसी को अनाज ही नहीं दे पा रहे हैं तो उसे भूखे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो हम उसके जीवन की रक्षा कैसे करेंगे। जीवन की रक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई उसकी हत्या न कर दे, बस वहीं तक जीवन की रक्षा करनी है, तो ये भी बकायदे जीवन का जो अधिकार है उसके तहत शामिल है। और इसी के साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बात कही है जो बहुत अच्छी है और जो हमारी अपनी कमजोरियों की ओर भी संकेत करती है, वो यह कि अभी तक हमारे पास सोच करके देखे कि प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाला कोई पोर्टल नहीं है कि जहां पर उनकी पूरी लिस्ट मिल जाए कि अच्छा ये मजदूर है यहाँ यहाँ रह रहा है और अभी यहाँ काम कर रहा है, तो जहां रह रहा था वहां का एड्रेस हमारे पास हो, जहां काम कर रहा है उसका हमारे पास एड्रेस हो, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि टेक्नोलॉजी कहां से कहां बढ़ चुकी है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं हमारे पास प्रवासी मजदूरों का पोर्टल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप ऐसा पोर्टल 31 जुलाई तक तैयार कर दीजिए ताकि सरकार के पास बकायदे उनकी जानकारी हो और उनके सही आंकड़े भी हो। जब तक हमारे पास जानकारी और आंकड़े नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ उन्हें कैसे दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो दो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इन दोनों का संबंध प्री एग्जामिनेशन के साथ साथ बकायदे मेंस से भी है और अभी 2 तारीख से जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस पर बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए और आप देखेंगे कि इस पर अखबारों ने आज काफ़ी एडिटोरियल कमेंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं कल्पना साहू, ब्रिजेश शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से, मीनाक्षी विजय शेरावत जयपुर से, संतोष कुमार दिवांगन जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, प्रशांत दिवार भोपाल से, राम काले महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, आकाश कुमार लोहिया चंदेरी मध्य प्रदेश से और पंकज द्विवेदी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।